अब उस सगुण के ध्यान का विषय आरंभ किया जाता है। भगवान के अनेक रूप है, उन रूपों के बीच के मां कोई तो भगवान शिव की उपासना करता है और कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है। तटस्थ होकर हम विचार करते हैं तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में महासर्ग के आरंभ के मां स्वयं सत्यचितान घन ब्रह्म ही समझो कि आपने विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, शिव के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव है वे भी सत्यचितान घन है और भगवान विष्णु जो है वे भी सत्यचितान घन है और वे समय समय के ऊपर भगवान विष्णु ही अवतार देते हैं। जैसे त्रेता युग के बीच के मां वही भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए, जिसकी कथा समझो कि पद्म पुराण के बीच के मां वाल्मीकि रामायण के मां आती है और भी सब रामायणों के मां आती है कि सब देवता लोग जाकर के क्षीर समुद्र के ऊपर और भगवान से अर्ज करी, देवता लोग दुखी होकर के तो भगवान ने आकाशवाणी से यह बात कही कि अच्छा मैं दशरथ के यहाँ अवतार लेऊंगा चारों अंश सहित। तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चार रूप के बीच के वहां परमात्मा सुख प्रकट हुई, जिसमें राम प्रधान और वे उनके अंश अवतार और श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसी प्रकार के द्वापर युग के बीच के मां जो भगवान कृष्ण के रूप में वही है सब प्रकट हुई, इसलिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और विष्णु एक ही चीज है, जिसकी भगवान श्री राम के मां श्रद्धा है, प्रेम है, रुचि है, उसके लिए भगवान राम की उपासना सबसे बढ़कर। और जिसकी श्रद्धा भक्ति और रुचि भगवान श्री कृष्ण जी के मां है उनके लिए सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी, और जिसकी श्रद्धा भक्ति रुचि जो है भगवान विष्णु में है तो उसके लिए सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का जो है सो जप ध्यान करना उत्तम है, और जिसकी भक्ति और रुचि और प्रेम भगवान शिव में है तो उसके लिए भगवान शिव का भजन ध्यान श्रुति पाठ करना सबसे उत्तम है। किसी भाई ने पूछा कि आप किस प्रकार से करते हो, आप भी तो एक प्रकार से कुछ करते होंगे। तो मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और भगवान विष्णु तीनों को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप मानता हूं, इसलिए मेरे तीनों ही समान है। कोई भाई मुझसे पूछने के लिए आता है भगवान राम के विषय में या श्री कृष्ण के विषय में, श्री विष्णु के विषय में, तो वो भक्त माने जिस स्वरूप का भक्त है उसको वही बात कही जाती है, उसकी जो श्रद्धा प्रेम भक्ति है उसको विचलित नहीं करता, क्योंकि सब एक ही चीज है। फिर भी आप कहोगे कि भी एक दूसरे समझो, मनुष्य ध्यान करता है समझो कि आपने अपना इष्ट देव मानता है तो कुछ तो उसमें करता ही होगा ना। तो उसका उत्तर यह है, भगवान विष्णु ने और भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने शास्त्रों के बीच के वहां उपदेश खूब उपदेश दिया है, पर उनका उपदेश जो है शास्त्रों के वहां भरा हुआ है। तो उन तीनों को देख करके के भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, जिसके शास्त्र श्लोक है, ये एक जगह के वहां जैसे गीता का उपदेश हमारे को मिलता है एक स्थान के बीच के वहां भीष्म पर्व के बीच के वहां भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश भगवत गीता, इसे को मैं इष्ट मानता हूं कि मैंने सबसे बढ़कर के भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश प्रतीत होता है। उपदेश तो भगवान राम जी का है, वो बहुत बढ़िया दिखता है, और भगवान विष्णु का जहाँ उपदेश आता है बहुत ही बढ़िया है, किंतु एक अपेक्षा तृतीया बात कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश जिसको हम गीता कहते हैं, जिसके ऊपर सैकड़ी टीकाएं हैं, उससे बढ़कर के और अध्यात्म विषय के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए दूसरा कोई ग्रंथ नहीं प्रतीत होता। अब दूसरी बात आई कि जैसे अनुकरण करना, जिसे शास्त्रों ने बताया कि यदि यदि आसृति श्रेष्ठ तत्व देवी त्रियोजन कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आसन करता है उसी के अनुसार इतर लोग चलते हैं, तो आचरणों के बीच के मैं देखता हूँ तो भगवान विष्णु के भी आचरण बहुत बढ़िया, और श्री रामचंद्र जी के भी, और श्री कृष्ण के भी, और तीनों ही महापुरुष, तीनों ही एक बार का साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो फिर पूर्वापर से उस शास्त्रों को देखने से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र जितना एक प्रकार से आचरण और नीति युक्त और समझो कि आपने ज्ञान और धर्म और नीति से परिपूर्ण, मर्यादा से परिपूर्ण जैसा प्रतीत होता है, वो सबसे बढ़कर प्रतीत होता है। तो इसलिए आचरण के वहां मैं भगवान श्री राम का अनुकरण करना बहुत ही अच्छा समझता हूँ। मुझसे उनका अनुकरण होता नहीं है, किंतु यत्किंचित मैं चेष्टा करता हूँ तो उसके अनुसार चलना अच्छा समझता हूँ। उनका एक प्रकार से अनुयायी बनकर के और उनका अनुकरण करने के लिए यत्किंचित प्रयत्न किया जाता है, तो ये सबसे बढ़कर के माना जाता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान, और व्यवहार और आचरण एक प्रकार से किसी का भी असर नहीं प्रतीत होता। अब रही बात है, एक प्रकार से तीन बात है कि एक तो जो उत्कोटि के जो महापुरुष साक्षात जो ईश्वर के अवतार हुए हैं, उनमें एक तो बात यह है कि उनका हुक्म मानना, उपदेश मानना, शायद परमाणु कुलते लोकस तदनु वर्ते, महापुरुष जिसको प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार सब लोग चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता की तीसरी अध्याय के 21 श्लोक में कह रहे हैं, तो जो उपदेश जो है, निर्णय जो है, वो तो आपको बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो निर्णय और उपदेश जो गीता में है वो सर्वोपरि महान। इसी प्रकार से आचरण के विषय में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सबसे बढ़कर उसको प्रतीत होता है। अब रही स्वरूप के ध्यान की उपासना, तो ध्यान के विषय के बीच के वहां जैसा मैं सुनता हूँ वर्णन भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, तो इन तीनों के वहां ध्यान के लिए मुझको सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य के अवतार में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदि हम लोग मनुष्य हैं, किंतु हम लोगों से एक प्रकार से उनका बहुत अतिशय डिफरेंस था, उसकी बात ही क्या कि वे तो समझो कि अपने साक्षात भगवान थे, परमात्मा थे, और उनका आना संसार के कल्याण के लिए था, और हम लोगों का जो जन्म है वो पुण्य और पाप से है, हम लोगों का जो शरीर है वो रोग से भरा हुआ है, और समझो कि पांच भौतिक है, और उनका जो शरीर है वो दिव्य था, अनामय था, अलौकिक था, किंतु आकृति तो उनकी मनुष्य की थी, और भगवान विष्णु का जो शरीर है एक प्रकार से थी वो भी एक दिव्य है, किंतु एक उनका स्वरूप देवाकृति के मां है, देवता जो है उनका स्वाभाविक एक स्वरूप मनुष्य की अपेक्षा दिव्य होता है, अलौकिक होता है। देवताओं के शरीर के बीच के मां तेजस धातु प्रधान है, तेजस धातु जैसे अपने सूर्य चंद्रमा आदि की जो धातु तेजस धातु है, और मनुष्यों के बीच के मां मनुष्यों की जो शरीर की धातु है वो पार्थिव है, क्योंकि पृथ्वी के मां उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए एक प्रकार से थी उन का जो शरीर है तो एक मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही अलौकिक है। इसलिए ध्यान जो है मैं सबसे बढ़कर विष्णु का समझता हूँ। तो तीनों की एक एक चीज लेकर के उपासना किया करता हूँ।